أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ارشاد رب العزت ہے اور کبھی بھی خداوند متعال کو ظالموں کے اعمال سے غافل شمار نہ کرنا. یہ مناظر جو پاکستان میں بار بار دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ خاص طبقے کے ساتھ ظالمانہ انداز سے پیش آیا جاتا ہے. اسی کی دہائی سے لے کر اب تک 40 سال ہو گئے تقریباً پاکستان میں مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے افراد کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی، دھماکے کیے گئے، ڈاکٹرز، انجینئرز، لائرز، تاجر، معاشرے کے سنجیدہ اور تعلیم یافتہ افراد کو قتل کیا گیا. اس کا آغاز کب ہوا؟ اس کا آغاز ضیاء الحق کے دور سے ہوا، جو کہ ایک عامر تھا اور اس نے پاکستان میں جو رواداری اور بھائی چارگی اور اتحاد بین المسلمین کا مظہر معاشرہ تھا، اسے آہستہ آہستہ تکفیریت کی بھینٹ چڑھایا، اسے ایک وہابی ملک بنانے کی کوشش کی، مختلف اداروں میں اسی مائنڈ سیٹ کو پروان چڑھایا، جنہوں نے مسلسل پاکستان میں رخنا اندازی کی. ہم نے 40 سال تک خون دیا پاکستان کو. پاکستان آج اگر اس کے چاروں حصے، پانچوں حصے جڑے ہوئے ہیں، تو اس میں، اس کی رگوں میں ہمارا خون ہے جو اسے بچائے ہوئے ہے. وگرنہ ان عامروں نے تو کوشش کی تھی کہ پاکستان کے حصے بکھرے ہو جائیں، پاکستان غیر مستحکم ہو جائے، توڑ دیا جائے، لیکن ہمارے اجداد نے یہ پاکستان بنایا، ہم نے اسے اپنے خون سے آبیاری اس کی اور یہ آج بھی باقی ہے اور یہ باقی رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ہمارے پیاروں کا خون شامل ہے، انہوں نے اپنے خون سے اسے بچایا ہے. یہ سلسلہ جاری تھا، پھر دھماکے شروع ہو گئے، پھر مساجد میں دھماکے، پھر جلوسوں میں دھماکے. یہ ایک مرحلہ تھا استقامت کا جو ہماری قوم نے گزارا، اور ہم نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان کے ادارے اس نقطے پہ آئیں کہ تکفیریت کو ایک مذموم جرم قرار دیں. پاکستان میں یہ عمل کس نے شروع کیا تھا اور کیا ضرورت پڑی کہ جناب پیام پاکستان جیسا ایک بل لایا جائے اور جناب لوگ اس کے اوپر دستخط کریں کہ تکفیر نہ کیا جائے کسی کو؟ یہ اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ کس نے یہ سب تماشا کرایا پاکستان میں؟ तो जो लोग नजर रखते हैं, जो लोग हर शय को फिक्र की निगाह से देखते हैं, वो जानते हैं। अब एक नया सिलसिला शुरू हुआ कि जनाब लोगों को अगवा किया जाए, उन्हें मावराए कानून लापता किया जाए। अब ये रविश है। गुज़श्ता मुहर्रम से एक रविश चली कि बेजा FIRs काटी जाएं, फोर्थ शेड्यूल में डाला जाए। ये जो हथकंडे हैं, इसके मकासद क्या हैं? ये लोग क्या हमारी तारीख को भूल गए हैं? 1400 साल हो गए मकतबे तशैयो को खून देते हुए, क्या मकतबे तशैयो के दुश्मन इस मकतब को ख़त्म कर पाए? तारीख में ये इस मकतब से ताल्लुक़ रखने वाले क्या तकिये में चले गए सब के सब? नहीं, आज हम यहाँ मौजूद हैं, अलल ऐलान मौजूद हैं। क्यों ये सब किया जाता है? इसलिए कि मकतबे तशय्यो इस वक्त दुनिया में एक ताकत रखता है, और जो इस ताकत से खौफ खाते हैं वो हमारे गिर्द घेरा तंग करने की साजिश करते हैं। फलस्तीन से लेकर यमन तक जो मनाजिर आज आपके सामने हैं, उसमें अगर किसी के सर पर हुसैनियत और हुसैन की इस्तकामत का ताज है तो वो मकतबे तशय्यो है। जिसने इस्तकामत के ज़रिए, खून के ज़रिए शहीद देकर अपना लोहा इस इलाके में मनवाया है, जिन्होंने इनसे खुल्लम खुल्ला जंग की, आपने देखा कि इसराइल ने मुख्तलिफ तरीक़ों से हमसे जंग की है। आखिरी हरबा जो उन्होंने इख्तियार किया वो ये था कि उन्होंने तंजीम बनाई दाइश इराक पर कब्ज़े के लिए, शाम पर कब्ज़े के लिए, इस पूरे इलाके को छोटे छोटे मुल्कों में तोड़ने के लिए। वो ये चाहते थे कि लुबनान टूट जाए, शाम टूट जाए, इराक टूट जाए, उर्दुन टूट जाए, मिस्र टूट जाए, अरबिस्तान टूटे, यमन टूटे, ईरान टूटे, पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाए। क्यों? इसलिए कि वो ये चाहते हैं कि बहुत छोटे छोटे मुल्क बना दिए जाए कि जिनको ज़रा सा भी अगर धमकाया जाए तो वो उनकी राय के मुताबिक अमल करें, उनके मंसूबे को आगे बढ़ाएं। लेकिन आपने देखा कि मकतबे तशय्यो के हीरोज़ और वो अफराद के जिन्होंने नफ़क़त मकतबे तशय्यो बल्कि आलम इस्लाम से दिफा किया, आओ देखो शाम में इन मुजाहिदों ने क्या बिरादरान अहले सुन्नत से दिफा नहीं किया? क्या ईसाइयों से दिफा नहीं किया? क्या यहूदियों से दिफा नहीं किया? इराक में इसी दाइश ने मूसल में रहने वाले बिरादरान ने अहले सुन्नत की ख़वातीन की बेहरमती नहीं की? उनके उलमा को एक वक्त में 50 उलमा के सर काट कर ग्रिल की नोक पर आवेज़ा नहीं किया? ये आज की दुनिया ने देखा है, ये हमने अपनी आंखों से देखा है। यही वो दाइश थी कि जिसके ख़िलाफ़ अगर हमारे मुजाहिद लड़े हैं तो वो दर हकीकत दाइश पाकिस्तान को भी तोड़ना चाहती थी। आज पाकिस्तान के अतराफ में आके बैठी हुई है, अफ़ग़ानिस्तान के बाज़ इलाक़ों में मौजूद है। कुछ अरसे पहले उन्होंने मच में मोमिनीन के सर काटे और ऐलान किया कि हमने ये जुर्म अंजाम दिया है। जो वक्तन व फक्तन ये काम करते हैं वो पाकिस्तान में भी रखना अंदाजी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं पाकिस्तान में सिपेक रोल बैक हो जाए, वो चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की ना करे, वो चाहते हैं पाकिस्तान इस्तेहकाम पैदा ना करे। अगर कल उन्हें शाम में शिकस्त ना दी जाती तो आज ये दाइशी बदमाश पाकिस्तान में अपनी कार्रवाइयां कर रहे होते। ये ना किसी मसलक को देखते हैं, ना किसी मजहब को देखते हैं, ना किसी दीन को देखते हैं। जो भी इनके सामने आता है उसे कत्ल करते हैं बहुत ही वहशियाना तौर पर। ये वो लोग हैं जिन्होंने माओं को उस कैफियत में कि एक माँ जिसके विलादत करीब है उसके बच्चे समेत उसे कत्ल किया। इसी तरक्की याफ्ता दुनिया ने ये मनाजिर देखे। इन्होंने रस्सी में बांधकर और ख्वातीन को फरोख्त किया। इस तरक्की याफ्ता दौर में जिसे ये मगरिब और अमेरिका के लोग कहते हैं कि ये तरक्की याफ्ता दौर है, ये तरक्की याफ्ता दौर है, तुम्हारी आंखें बंद हैं यमन के बच्चों से जिन्हें कीमा कीमा किया जाता है बमों से, जिस वहाबियत के लिए तुम अपना सर धुन रहे थे, आज जाओ देखो वो वहाबी तो अब कंसर्ट करते हैं, वो तो शराब खाने खोलते हैं, वो तो अब नाच और रक्स की महफिलें करते हैं, ये अब उन्होंने अपना लिया है। आप भी आ जाओ इसी बात का ऐलान करो, अब हम आज से पाकिस्तान में ये अमल अंजाम देंगे। इसलिए कि हम उनकी तकलीद करते हैं, जो वो कहते हैं वो करते हैं। वो अगर एक रियाल दे दें तो हम उसके मुताबिक जो वो कहते हैं वो करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम हैं कि जिन्होंने उस वक्त भी मुकाबला किया, अभी भी मुकाबला किया है, हमें इस जुर्म की सजा दी जाती है। याद रखो कि हमने अपने पाकिस्तान का दिफा किया है। अगर कल शाम में दाइश को शिकस्त हुई है तो पाकिस्तान में पाकिस्तान की बका की जामिन बनी है। पाकिस्तान अगर आज सुकून से मजमूई तौर पर यहाँ पर लोग रह रहे हैं तो इसकी वजह यह है कि वहाँ पर कुर्बानी दी गई है। वगरना आज अगर दाइश पाकिस्तान में घुसी होती तो उसका यही काम था जो उन्होंने शाम में किया, लोगों के घरों को तबाह किया, इराक़ में किया, ख़ानदानों को तबाह किया, 6 मिलियन के करीब शामियों को जो है वो तबाह बर्बाद करके रख दिया उन्होंने। पाकिस्तान में क्या हशर हो, यहाँ पर जो अनासिर हैं उनको खुश करने के लिए ये जो लोग हैं इन्हें लापता किया जाता है। क्यों, इनका जुर्म है? जो मुसलमा मुजरिमीन हैं, एहसानुल्लाह एहसान की तरह के लोग हैं, उनको आप जो है वो आज़ादी फराहम करते हैं, उनको जो है वो बेहतरीन तरीके से फैसिलिटेट करते हैं। जो पेशावर में इतने बड़े जुर्म में शरीक रहे उनका जुर्म आपको नहीं नज़र आता, और यहाँ पर आप गैर ज़रूरी और एक ऐसा अमल के जो जुर्म नहीं है उसे जुर्म बनाकर लोगों को लापता करते हैं, ये कब तक आप करेंगे? आप क्या समझते हैं कि हमेशा दुनिया में रहने के लिए आए हैं? आपका कोई हिसाब किताब कहीं नहीं होगा, हतमन होगा। यही लोग थे जिन्होंने कितने बेगुनाह बच्चों को कत्ल किया पेशावर में। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुख्तलिफ बेसिस पे हमला किया, मेहरान बेस पे हमला किया। कोई एक ऐसा वाकया मकतबे तशय्यु के हवाले से दिखाओ कि हमारे किसी शख्स ने कोई ऐसा अमल अंजाम दिया हो पाकिस्तान में। हमने हमेशा अपनी धरती और ज़मीन के साथ वफा की है, हम पाकिस्तान के वफादार फर्जंद हैं, जिम्मेदार लोग हैं, हम लाउबाली नहीं हैं। और जिन्होंने ये समझा है कि हम हर दौर में हर तरह का खेल खेल लेंगे पाकिस्तान में, तो वो शायद भूल जाते हैं कि इस कायनात का कोई चलाने वाला है जिसे जुल्म कतन पसंद नहीं है। खुसूसन ऐसे अफराद पर जुल्म करना कि जिनकी हिमायत करने वाला कोई ना हो। खुदावंद मुताल एक ऐसी आह से उसका गजब सामने आता है, वो गजबनाक होता है, उसकी गैरत इस बात का तकाजा करती है कि वो जालिम से बदला ले। जुल्म इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि इस तरह से लोगों को लापता किया जाए, अगवा किया जाए, फिर ये कहा जाए कि जनाब हमें मालूम नहीं है। आपको अगर मालूम नहीं है तो फिर किसको मालूम है, और अगर नहीं है तो मालूम करो, जाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे पूरा करो। आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, मजबूर होकर धरना देना पड़ता है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करते होते तो धरने की नौबत क्यों आती? फिर यह पैगाम दिया जाता है कि जनाब धरना खत्म कर दिया जाए। फिर अगर इन हालात से फायदा उठाकर कोई शख्स आकर कराची की दीवार पर कोई तहरीर लिखता है तो वो हमसे मंसूब कर दी जाए। ये हथकंडे पुराने हो गए हैं, ये बच्चों वाली बातें हैं। ये पीडीएम की तहरीक चलती रही, उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा आपके खिलाफ। अगर मैं कुछ बातें नकल करूं तो आपको याद दहानी शायद हो जाए कि उन्होंने क्या क्या कहा अपने जलसों में। तो फिर आपने उनके जलसे बंद करा दिए थे, उनसे डरते हैं, हम पे जुल्म करते हैं, उनसे खौफ खाते हैं, उनके मदारिस के बच्चों से डरते हैं, आओ जाओ मुकाबला करो, जिन्होंने पाकिस्तान में तकफीरियत की बुनियादें रखी हैं, बगावत की, जाओ उनसे मुकाबला करो, वहां पर कंपलसेट करते हैं, यहां पर अपने जुल्म की इंतहा करते हैं। ये जुरतमंद लोग नहीं हैं, ये बुजदिल लोगों का काम है कि जो कमजोर है उस पर हाथ साफ करें, उसके साथ जुल्म के तरीके से पेश आए। क्या इनका जुर्म है, आओ बताओ, क्या किया इन्होंने, किसको टारगेट किया है, कहां धमाका किया है? कोई जवाब नहीं है इल्ला ये कि जनाब बाज लोगों को खुश करना चाहते हैं, शाम में दाइश की शिकस्त का बदला लेना चाहते हैं। ये बदला है, इससे अपने दिल के फपोले फोड़ना चाहते हैं। तो याद रखो कि हम बुजदिल नहीं हैं। हमने जहां पर भी अलल ऐलान जंग हुई है वहां पे दुश्मन का मुकाबला किया, हमारा सर कट गया, लेकिन साजिश और तस्लीम नहीं हुए। पाकिस्तान में भी हमारा यही रविश है, तो हमारा सर काट सकते हो, तस्लीम नहीं होंगे। तुमने अगर ये तय कर लिया है कि हम जो चाहेंगे जिस पर लेबल लगा देंगे, तो जो तुम पर लेबल लगा रहे हैं उनको तो जाके पकड़ो, वो तो सरेआम मीडिया पर लेबल लगाते हैं। कहा गया जनाब फलान जगह दीवार पर ये लिख दिया गया है, तो भाई तुम्हारे ही लोगों ने लिखा होगा, जाओ अपने लोगों से पूछो किसने लिखा है। ये जो बच्चों वाली बातें हैं कि जनाब फलान दीवार पर यह लिख दिया गया है, ये हमारे इस पुरामर धरने को सबोताज करने के लिए प्लानिंग की होगी। आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं प्लानिंग कौन करता है, जाओ उस प्लानर को तलाश करो अगर नहीं जानते हो। यही कराची था जहां पर हर दीवार पर लिखा होता था काफिर काफिर शिया काफिर, वो कौन लिखवाता था? उसके इल्म किसी को नहीं होता था, सब बच्चे थे उस वक्त, कुछ नहीं जानते थे बेचारे। हम भी बहुत कुछ जानते हैं, हम भी अपर चैम्बर रखते हैं, हमारा भी मग्ज काम करता है, हम जो है वो मफलूज नहीं है जहनी तौर पर, लेकिन हम फिर भी बहुत सारी चीजों में एहतियात से काम लेते हैं। हम बास चीजें पर्दे में हैं तो पर्दे को चाक नहीं करना चाहते, लिहाजा हमारा ये मुतालबा है कि ये माएँ बहनें जिन मुतालबात को लेके यहाँ बैठी हैं, हम इनकी हिमायत करते हैं, इनका साथ देंगे, इस्तकामत करेंगे। हमने कल पूरे सिंध में और तकरीबन मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अलामती धरने का ऐलान किया है, 3 से 4 घंटे अलामती धरना मुख्तलिफ अजला में होगा। और ये जो तहरीक है जबरी लापता करने के खिलाफ, ये इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगी। और ये बात तय है कि इस तहरीक को इतनी आसानी से दबाया नहीं जा सकता। कोई अगर ये समझे कि हम दबा देंगे, धमकी देंगे, थ्रेट करेंगे, ये हो जाएगा, करें बिस्मिल्लाह, ये बैठे हुए हैं निहत्ते, अभी ऑर्डर दें इदारों को कि वो आए, पुलिस आए, रेंजर्स आए, मारे इनको, कत्लेआम करें। जब वो घरों से अगवा करके ले जा सकते हैं तो ये काम भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यही कानून है, जिसकी लाठी भैंस उसी की। तो फिर दूसरे दुनिया में जो बड़े मगरमच्छ हैं वो भी अपना मुंह खोल के बैठ जाएंगे। ऐसा वक्त ना आए पाकिस्तान पर। हम पाकिस्तान का इस्तेहकाम चाहते हैं, हम पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देते रहे, आइंदा भी देंगे। और एक कुर्बानी यह है कि ऐसी काली भेड़ों को अपने खून से पाकिस्तान से पाक करके रहेंगे। हम अपना खून देंगे ताकि ये काली भेड़ें जो छुपी हुई हैं, जो वक्तन फवक्तन ऐसे काम करती हैं। अफसोस होता है कि आपके लोग आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें अलग ऐलान ये मीडिया में कहें आकर के, जनाब जिन लोगों ने एहसानुल्लाह एहसान को फैसिलिटेट किया वो हमारे ही कुछ लोग थे। तो इसका मतलब ही आप ऐलान करते हैं कुछ लोग हैं ऐसे। उसके बावजूद आप कहते हैं कि जो हम कहते हैं वो बात सही है, नहीं ये बात गलत है। आवाम के साथ जुल्म के साथ ज्यादा देर तक पेश नहीं आया जा सकता। ये आवाम है, ये अपना हक लेगी, खड़ी है। आप ना दो ठीक है, आप अपना काम करो, ये अपना काम करेंगे, देखते हैं कि फतह नुसरत जो है वो किसको हासिल होती है और खुदावंद आलम किसकी मदद करता है। हम यहाँ खुदावंद आलम के सहारे पर जमा हैं, उसके अंबिया और औलिया और रसूल गिरामी और आइमा अलैहिस्सलाम के नफूस ताहिरा इस अमल को देख रहे हैं और हमसे वो ये चाहते हैं कि हम इस्तकामत करें। हम इस्तकामत करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, आइंदा भी करेंगे, और इंशाअल्लाह उनके सामने दुनिया से सुर्खरू होके जाएंगे। मैं आपको اطمینان دلاتا ہوں کہ جو بھی خداوند عالم کے راستے میں قدم رکھتا ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر آپ خدا کی مدد کریں گے خدا بھی آپ کی مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور آپ کے قدموں کو ہمیشہ کے لیے ثابت رکھے گا اور آپ کو اپنے مقاصد میں کامیاب کرے گا۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔